श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ एकत्रित बैठे हैं। आज मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं अपने उन सभी नए मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि पत्रस कहता है कि हमें अपनी बुलाहट और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहना है। जिससे कि हम कभी ठोकर ना खाएं और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करें। तो आइए आज हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपकी निकटता में आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें, आपके वचन में से सीखने पाएं। हमारी प्रार्थना है पिताजी, आज के अध्ययन पर आप अपनी आशीष प्रदान करें। हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उनके आत्मिक आँखों को, कानों और हृदय को, विचारों को आप खोल दें, ताकि आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, एक एक के जीवन आशीषित होने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और दबाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें शांति दे, उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए, अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सब पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि पत्रस बहुत ही गंभीरता से इस बात को हमें बताता है, सुसमाचार मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, अर्थात परमेश्वर का वचन। कहता है कि पत्रस, याकूब और यहूना ने तो प्रभु यीशु के प्रताप को अपनी आंखों से देखा था और आकाशवाणी भी सुनी थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अतः हमें अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने को सदा स्मरण रखना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 19 पद। एक अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पांव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। लिखा है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है। जी हाँ, यहाँ भविष्यद्वाणी का अर्थ भावी कहने मात्र से नहीं है, इसका अर्थ है संपूर्ण धर्मशास्त्र, क्योंकि वह धर्मशास्त्र को परमेश्वर का उच्चारित वचन कहता है। अगले पद में पत्रस स्पष्ट करेगा कि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से सुनकर लिखने वाले लिपिक नहीं थे, वे अपनी भावनाओं और विचारों को भी लिख देते थे, तथापि परमेश्वर धर्मशास्त्र के लेखकों के माध्यम से अपनी पूर्ण इच्छा और वचन को लिखवाता था। इसी कारण बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। परमेश्वर का वचन अलौकिक ही नहीं, मानवीय भी है। जैसे प्रभु यीशु मनुष्य था, परंतु पूर्ण रूपेण परमेश्वर भी था। बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है और साथ ही मनुष्य की पुस्तक भी। वह हमारे जीवन को दैनिक स्तर पर प्रभावित करती है, परंतु वह मनुष्य की अपनी सुबोध भाषा में परमेश्वर की वाणी भी है। बहुत से लोग सोचते हैं, काश मैं पत्रस के साथ होता और उन सब बातों को देखता और सुनता। परंतु मेरे मित्रों, आपके पास तो इससे भी अच्छा कुछ और है। आपके पास परमेश्वर का पूर्ण वचन है जो आपसे सीधी स्पष्ट बात करता है, यदि आप अपना मन खोलकर सुने। परमेश्वर का वचन सुनने और देखने से अधिक उत्तम है। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह दृढ़ ठहरा है, अर्थात भविष्यद्वक्ताओं का वचन अधिक पुष्ट हो गया है। लिखा है वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में चमकता है। यह सच है, परमेश्वर का वचन सूर्य के समान एक ज्योति है। वह प्रकाश देता है, सामर्थ्य देता है, बल प्रदान करता है। आज इस संसार में हमारे पास एकमात्र स्पर्श गम्य अलौकिक वस्तु बाइबल ही है। बाइबल एकमात्र संसारिक चमत्कार है जो इस समय हमारे पास परमेश्वर की देन है। मेरे प्रियो, यीशु के फिर आने तक हमारे पास बाइबल ही रहेगी। लिखा है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। यीशु को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 22 अध्याय 16 में भोर का तारा कहा गया है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन तक बाइबल परमेश्वर का वचन वह बल है जो संसार में मनुष्य को सांसारिकता से अलग करके परमेश्वर की भुजाओं में डाल देता है। यहाँ कैसा उत्तम परिदृश्य दिखाया गया है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ध्यान दीजिए, पहले यह जान लो। पत्रस कहता है कि हमें पहले यह जान लेना है। जान लो अर्थात सच्चे मन से स्वीकार करना कि बाइबल में व्यक्त सत्य वास्तव में सत्य ही है। यह परमेश्वर के वचन से प्राप्त जानकारी नहीं और न ही सिद्ध तथ्य है, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा आप पर प्रकट सत्य है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं जब मैं चाहता था कि बाइबल को मेरे लिए सिद्ध किया जाए कि वह सच है। उस समय मैं पुरातत्व विभाग की खुदाइयों में बाइबल की किसी सच्चाई का प्रमाण देखकर छोटे बच्चे के समान ताली बजाता था और कहता था, अति उत्तम। परंतु अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मुझे आवश्यकता नहीं है कि एक तसला मलवा लेकर मैं उसमें बाइबल की सत्यता को देखूं और सिद्ध करूं। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन बाइबल को मुझ में सिद्ध कर दिया है। अब मैं जानता हूं कि बाइबल में परिवर्तन लाने वाला सामर्थ है। मुझे संपूर्ण विश्व से पत्र प्राप्त होते हैं जो इस सत्य की गवाही देते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में सच में सामर्थ है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रमाणित सत्य हमारे लिए इसका प्रमाण है, क्योंकि यह जीवन बदलता है। आगे लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पत्रस के कहने का अर्थ है कि धर्मशास्त्र का कोई भी अंश धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों के बिना समझाया ना जाए। यही कारण है कि धर्मशास्त्र से एक पद निकालकर उस पर एक धर्म सिद्धांत स्थापित करने में मैं इसका विरोध करता हूं। यदि आपके पास किसी विचार की पुष्टि करने के लिए धर्मशास्त्र का संपूर्ण संदर्भ नहीं है, तो मेरे मित्रों, आप नए विचार से सावधान रहें। मेरे विचार में इसका एक अति उत्तम उदाहरण है। एक पहिए की साइकिल पर सवारी करने की अपेक्षा चार पहियों की सुदृढ़ गाड़ी पर सवारी करें। एक बार मैंने सर्कस में देखा था कि एक व्यक्ति उस एक पहिए की साइकिल पर ऊंची सी गद्दी पर सवार संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था कि वह साइकिल उसके नीचे से निकल गई और वह सिर के बल पीछे गिर गया। वह बहुत ही बुरी तरह गिरा था। मैं सोचने लगा, ओह, आज कितने विश्वासी ऐसी ही सवारी करने का प्रयास कर रहे हैं। वे एक बाइबल पद पर अपने विश्वास को आधारित कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है कि बाइबल के किसी सुनहरे पद को स्मरण करें, याद करें, परंतु उस पद के तथ्य पर आधारित बाइबल के अनेक अन्य पद हैं। शमौन पत्रस कहता है कि धर्मशास्त्र का कोई भी अंश धर्मशास्त्र से विलग समझाया ना जाए, यानी कि अलग रीति से ना समझाया जाए। आवश्यक है कि हम प्रत्येक पद को पढ़ें और उसकी पुष्टि धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों के साथ में करें। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। वह पुराने नियम के भविष्यवाणियों के बारे में कह रहा है कि वे भविष्यवाणियां मनुष्य की अपनी इच्छा से बनाए गए संदेश नहीं थे। जी हाँ, यशाया भविष्यद्वक्ता ने यह नहीं सोचा कि वह बैठकर एक किताब लिख डाले, कि प्रकाशक उसे उस पुस्तक के छापने का पैसा दे और फिर उसे पैसा मिलता रहे। ऐसा आज के लेखक प्रायः करते हैं, परंतु यशाया ने ऐसा नहीं किया जो एक भविष्यद्वक्ता था। यही पत्रस भी कहता है, भविष्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। यशाया ने अपनी इच्छा या उमंग से भविष्यवाणी नहीं की थी। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है भक्त जन। भक्त जन का अर्थ यह नहीं कि भविष्यवक्ता दिखावा करने वाले भक्त थे। इसका अर्थ है कि वे भविष्यवाणी की सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा चुनकर अलग कर लिए गए थे। तब हम आगे देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। मूल भाषा यूनानी में यह एक पानी के जहाज का रूपक है। प्राचीन युग में पानी के जहाजों के पाल होते थे जिनमें हवा भर जाती थी और जहाज के आगे बढ़ने पर विवश करती थी। एक डॉक्टर एक मरीज की ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन नौका प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ा। जब वह डॉक्टर लौट कर आया तब उस मरीज ने उससे पूछा कि वे कैसे नाव को इतनी गति प्रदान करते हैं। तब उसने बताया कि वे एक पाल लगाते हैं जिसमें हवा भरकर नाव को आगे बढ़ाती है। इस पद में पत्रस के कहने का अभिप्राय यही है, भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा से भरकर लिखने पर विवश हो जाता था। मेरे मित्रों, यह पत्रस का अंतिम लेख है और पौलुस के अंतिम लेख के समान वह ईश्वर त्याग के समय परमेश्वर के वचन के महत्व पर बल देता है। दूसरा तीमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कहता है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं, और पत्रस कहता है कि धर्मशास्त्र के लेखक परमेश्वर की आत्मा द्वारा विवश किए गए थे। दोनों के कहने का अभिप्राय एक ही है। यह एक महान बात है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को वचन लिखने के काम में लेता है, परंतु उसकी लेखन शैली और व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करता है, जिससे कि उसका संदेश भली भांति व्यक्त हो। पौलुस की भाषा में प्रभावशाली यूनानी थी और पत्रस जो एक मछुआ था, मछुआ होने के कारण बहुत अच्छी यूनानी नहीं बोलता था, परंतु परमेश्वर दोनों को ही अपना अपना वचन बनाने और लिखने के लिए काम में लिया। यदि परमेश्वर स्वयं आकाश से उतरकर इन्हीं वचनों को दोहराता तो यह उचित ना होता, क्योंकि हम जानते हैं कि वह मनुष्य से यही कहना चाहता था कि परमेश्वर जो वचन दे रहा है वह उसी का वचन है। परमेश्वर ने विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिभाओं के मनुष्यों द्वारा हमें अपना वचन दिया है, और यही कारण है कि मैं बाइबल को ईश्वरीय पुस्तक और मानवीय पुस्तक कहता हूं। अतः लिखित वचन मानवीय तथा ईश्वरीय वचन दोनों हैं, जैसे प्रभु यीशु मनुष्य जीवित वचन था। प्रभु यीशु किसी मृतक के लिए रो सकता था तो किसी मृतक को जीवित भी कर सकता था। वह थकान और प्यास के कारण कुएं पर बैठ गया था, परंतु वह पापियों को जीवन का जल भी दे सकता है। वह नाव में थक कर सो रहा था, परंतु उसमें आंधी का मुंह बंद करने का भी सामर्थ था। वह मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। उसी प्रकार बाइबल मानवीय रचना होकर भी परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, शमौन पत्रस कहता है कि हमारे पास भविष्यवाणी का पुष्ट वचन है। वह हमारे पांव के नीचे दृढ़ चट्टान रखता है। हमें धर्मशास्त्र में विश्वास है। अतः परमेश्वर के वचन पर सबसे अधिक आक्रमण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यह कोई नई बात भी नहीं है। बैरी जानता है कि यदि वह नींव को हिला दे तो इमारत गिर जाएगी। यदि कोई प्रचारक कहता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है तो वह उस पागल के समान है जो पागल खाने की नींव खोद रहा है। वहां एक आगंतुक था जिसने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है? उसने कहा, दिखता नहीं, मैं नींव खोद रहा हूं। आगंतुक ने कहा, तुम नींव खोद रहे हो तो इमारत को गिरा दोगे, फिर रहोगे कहां? उस पागल ने कहा, मैं तो ऊपर की मंजिल में रहता हूं। अतः वह प्रचारक जो कहता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, वह ऐसा ही एक पागल है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र हमारे विश्वास की नींव है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि पिछली बार वह यूनान में था, तब वह एक बार और एक्रोपोलिए गया और पार्थेनोन को ध्यान से देखा। उसने उसे बार बार ध्यान से देखा। वहां कोई भी दो रेखाएं समानांतर नहीं है और न ही कोई सीधी रेखा है। यदि आप एक कोने में खड़े होकर के नीचे देखें तो वह बीच में ऊपर की ओर गोलाकार है और दूसरी ओर नीचे जाती है। यूनानी जानते थे कि सीधी वस्तु को मनुष्य की आंखें सीधा नहीं देख पाती हैं। मेरे विचार में यही कारण है कि परमेश्वर कहता है, हमें आंखों से देखकर चलने की अपेक्षा विश्वास से चलना चाहिए। हम न तो अपनी आंखों पर विश्वास कर सकते हैं और न ही अपने कानों पर, परंतु हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। बाइबल निश्चय ही परमेश्वर का वचन है, इसका प्रमाण है भविष्यवाणियों की पूर्ति। जब वचन लिखा गया था तब लगभग एक तिहाई भविष्यवाणी का वचन था। बाइबल कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। किसी ने एक अति उत्तम बात कही, भविष्यवाणी एक सांचा है जिसमें इतिहास उंडेला जाता है। मेरे लिए तो भविष्यवाणी की पूर्ति धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता का एक महान प्रमाण है। पत्रस कहता है कि हमारे पास भविष्यवाणी का पुष्ट वचन है, क्योंकि एक चौथाई भविष्यवाणी की पूर्ति हो चुकी है। इसलिए बाइबल के एक तिहाई भाग का एक चौथाई भाग पूर्ण हो गई भविष्यवाणी है। मनुष्य अपने आप सही अनुमान नहीं लगा सकता है। पुराने नियम में प्रभु यीशु के आने की 330 भविष्यवाणियां हैं और वे सब पूरी हो चुकी हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भविष्य का सही अनुमान लगा सके। मेरे मित्रों, मैं एक उदाहरण और देता हूं। मैं कहता हूं कि कल वर्षा होगी तो आधी संभावना है कि कल वर्षा हो। अब मैं कहता हूं कि कल सुबह 9 बजे वर्षा होगी तो मेरे सही होने के 50 में से 50% संभावना और कम हो गई। अब मैं कहता हूं कि कल सुबह 9 बजे वर्षा होगी और 2 बजे वर्षा थम जाएगी। अब मेरे सही होने की संभावना 50% से घटकर 25% थी, वह भी घटकर 12.5% रह गई। अब मान लीजिए कि मैं भविष्यवाणी के 300 कारण प्रस्तुत करूं तो मेरे सही होने की संभावना कुछ भी नहीं रही, परंतु परमेश्वर का वचन सही निकला। मेरे प्रियो, वचन सर्वथा सही है। बाइबल ने ऐसे क्षेत्र में भविष्यवाणी प्रकट की है जो 100% असंभव है, परंतु वह सही निकली। इसका अर्थ है कि बाइबल स्पष्ट प्रमाण है कि वह परमेश्वर का वचन है जिसे मुझे और आपको मानना है, उस पर विश्वास करना है, क्योंकि यही वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, हमें सुधारता है और हमें सही मार्गदर्शन देता है ताकि हम परमेश्वर के निकटता में फिर से आ जाएं। आज मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है, आप बाइबल को क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, परंतु आज हमने सीखा है, हमने देखा है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही परमेश्वर के वचन की गंभीरता को सीखा है और जाना है, और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप उस वचन पर विश्वास करेंगे, उसे पढ़ेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है।
कभी नहीं।